ओम शांति। एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। आप सब राजू भाई जी को अच्छे से जानते हैं। लगभग 50 वर्षों से हेडक्वार्टर में सेवारत हैं। बहुत छोटी आयु में समर्पित हो गए थे और दीदी मनमोहिनी से लेकर के दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और वर्तमान में दादी रतन मोहिनी, सबके आप कोरेस्पोंडेंट हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। भारत की और विदेश की बेहद सेवाओं में आपका विशेष योगदान है। मुरली, पत्र, पुष्प और मुरली में वरदान, प्रश्न उत्तर, इन सब को निकालने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। आपने कई पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई हैं, जो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती हैं। तो अभी भ्राता जी से हम सुनेंगे उनके अनुभव युक्त बोल। मंथन, रोरिहान और अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, ये टॉपिक।
ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के इस शांतिवन की बरसात के बीच में बहुत अच्छे योग के अनुभव कर रहे हैं ना। लगता है कि बहुत अच्छा बाबा ने गोल्डन चांस दिया है। स्पेशल हमारे डूंगरपुर के भाई बहने हाथ उठाओ। अच्छा, और दूसरा दिल्ली से है, कहाँ से बोला था? दिल्ली, रोहिणी कहाँ? नरेला, नरेला वाले हाथ उठाओ। उदयपुर डूंगरपुर है, सागवाड़ा, विजय बहन आगे। आप तो बहुत समीप में बाबा के घर की शक्तियों का अनुभव करते रहते होंगे। जो समीप रहते हैं उनको ज्यादा शक्ति मिलती है ना। तो उदयपुर डूंगरपुर तो बहुत समीप है, दिल्ली थोड़ा सा दूर है, लेकिन बाबा तो दिल्ली को बहुत याद करता है। कहता है दिल्ली वाले तो मेरे दिल में रहते हैं। तो इसलिए बाबा के घर में जो 5-6 महीने से सभी ने तपस्या की है, बाबा ने भी एक अच्छा गोल्डन चांस दिया। जो कहा बच्चे सब सेवाओं को अभी भले समेट करके योग करो, मनसा सेवा करो, तो आप सभी ने भी अपने अपने स्थानों पर तो भट्टी की है, योग किया है। मैं डूंगरपुर वालों से पहले भी एक बार मिल चुका हूँ क्लास के बीच में, यहाँ से ही ऑनलाइन मिले थे सभी, सुना था सभी ने क्लास। सुना था, हाथ उठा रहे हैं थोड़े थोड़े, धीरे धीरे उठा रहे, समझ नहीं पाए। ऑनलाइन मिले थे। बाबा ने वर्तमान समय हम सबको डबल लाइट फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए विशेष बहुत जवाबदारियों से हल्का कर दिया, क्योंकि फरिश्ता माना हल्का, लाइट। फरिश्ता ऐसा नहीं शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बन जाएंगे, लेकिन शरीर में रहते हुए जब हम बाबा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, भक्ति मार्ग में कहते थे ना, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा, ना लागे कुछ मेरा। आरती तो बहुत गई, अभी प्रैक्टिकल उसका अनुभव बाबा करा रहे हैं। बच्चे तुम्हारे पास है क्या? जो भी है कखपन, वो सब मेरे आगे अर्पित करके हल्के हो जाओ। करण करावन हार बाबा करा रहा है। अगर कोई हम बच्चे अच्छे से अच्छा कार्य कर भी रहे हैं तो कराने वाला कौन है, उसकी याद रहती है, इसलिए कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं आता। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। कई बार ये बहुत सूक्ष्म अभिमान बोझ बन जाता है। अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, कोई हमारी बात को कट कर देता है, कहीं सफलता नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है, तो आत्मा एकदम परेशान हो जाती है, भारी हो जाती है। संगम युग पर जिन आत्माओं ने बाबा को पहचाना और कहा मेरा बाबा दिल से, और बाबा को सब कुछ अर्पित कर दिया, बाबा आप जो कराना हो करा लो, हम लोगों का तो यही अनुभव है, बाबा आप जो कराना है करा लो, ये तन आपका है, ये मन आपका है, जो कुछ विशेषताएं आपने दी हैं वो आपके काम में लग जाएं, लगा दिया, लग गई सेवा में और हल्के हो गए, समर्पित कर दिया, चिंता नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा। तो फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए कर्म में रहो, हर कार्य व्यवहार करते हुए डबल लाइट रहना, बोझ नहीं, हल्के नहीं, क्योंकि योग के लिए हल्कापन बहुत जरूरी है। उड़ना है ना, उड़ने के लिए आत्मा को हल्का बनना पड़ता है। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, भारीपन है, तो वो बैठेगा योग में लेकिन उड़ नहीं सकता। मन से बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाए। बाबा कभी कभी कहते हैं अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ड्रिल करो, अभ्यास करो। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को विशेष खातरी भी करते थे और एक्सरसाइज भी कराते थे। देखा होगा कई फोटो बाबा के उस समय के हैं कराची के, जिनमें बहनें एक्सरसाइज कर रही हैं समुद्र के किनारे। तो एक्सरसाइज भी कराते थे, फिर उनको घी पिलाते थे, ताकत की चीजें खिलाते थे, जिससे तन और मन हेल्दी बन जाए। अभी भी अव्यक्त वतन में बाबा वही रूप में है, मात पिता के रूप में। कभी अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा मेरी बड़ी माँ है, शिव बाबा बाप है, दोनों हम बच्चों का सवेरे सवेरे आह्वान करते हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। मैं सुनाई देती आवाज की नहीं, इतना इतने बिजी होते हो जो आवाज नहीं सुनती है। तो बाबा की ऐसे प्यार की स्नेह की आवाज सवेरे सवेरे जब कानों में आती है, और बाबा ऐसे बच्चों का आह्वान करके बुला लेता अपने पास, और बुला करके फिर अच्छे वरदान, अच्छी अच्छी मीठी मीठी रूह रिहान करता है, शक्ति बढ़ता है, और फिर कहता बच्चे अभी दौड़ लगाओ, इसको हजम करने के लिए एक्सरसाइज करो। तो सभी एक्सरसाइज तो करते हो ना कि नहीं, शरीर की एक्सरसाइज। आजकल डॉक्टर कहते हैं दवाइयों से अच्छा एक्सरसाइज करो, दवाइयां तो साइड इफेक्ट कर देती हैं। आप एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो हम सबको भी बाबा ने सशक्त शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज सिखाई है, और एक्सरसाइज से हल्के बनते भी हैं, और जो हल्के होते हैं वो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, दोनों बातें हैं। एक्सरसाइज हल्का भी बना देती है, और एक्सरसाइज जो हल्के होते हैं वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो हम सबको भी बाबा कहता है आँख खुलते ही कभी साकारी वतन की बहुत अच्छी अच्छी अपने भाग्य की, अपनी प्राप्तियों की, संगम की खूब महिमा करो। रूह रिहान, आत्मा से आत्मा जैसे बात कर रही है, रूह रूह से बात करती है, तो ऐसे बहुत मीठी मीठी अपने आप से बातें करो। जैसे कोई कोई की आदत होती ना, ऐसे अपने आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहता है जब ऐसे बैठते हो अकेले में तो अपने भाग्य को देखो, क्या बाबा आपने मुझे बनाया, कहाँ तो मैं किस कलयुग की दुनिया में था, क्या कर रहा था, ना आपको पहचानता था, ना अपने स्वधर्म को जानता था, ना श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान था। बाबा आपने मुझे ज्ञानवान बना दिया, ज्ञान दे करके भटकने से अंधकार से निकाल दिया। रूह अपने आप से रूह रियान करती, पहले अपने से तो बातें करें फिर बाबा से बातें करें। तो ऐसे ही बहुत दिल से प्यार से अपने भाग्य का चिंतन करना, अपने आप से पूछना, क्योंकि अपने को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका, अपने में कोई संस्कार हो ना, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई संस्कार, तो उसको बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से बातें करना, अपने आप को पढ़ाना, अपने आप से पूछना। कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ये मुखड़ा देखना माना अपने से पूछना कि मैं आत्मा किस लक्ष्य के लिए बाबा की बनी हूं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है तुम्हें मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। पहले हम मनुष्य सच्चे पक्के ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण जब शुद्ध शाकाहारी बहुत पवित्र बन जाते हैं तो फरिश्ते बन जाते हैं, संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, और जब फरिश्ता बनते हैं तो देवता में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप सभी पढ़ाई कर रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, क्या एम ऑब्जेक्ट है? यही लक्ष्य है ना कि हमें फरिश्ता बनना है। देवता तो बाबा कहता बन ही जाओगे, वो तो सत्ययुग आएगा तो देवताओं को ही आना है। इसलिए हम सब मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई के पहले संगम युग पर फरिश्ता बनने का प्रसाद कर रहे हैं। और फरिश्ता बनने के लिए जहां जहां भी बुद्धि के रिश्ते हैं, आत्मा के रिश्ते हैं, सबसे ज्यादा रिश्ता कहाँ है? आत्मा का, इस शरीर में सबसे ज्यादा है। कोई भी जहां रिश्ता होता ना वहां बार बार बुद्धि जाती है, बार बार ध्यान जाता है। आज शरीर को अगर कुछ भी हो जाता है नीचे ऊपर तो कितना ध्यान बुद्धि का जाता है, बार बार वो खींचती रहती है, आज ये दर्द है, आज ये तकलीफ है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो इसके साथ कितना आत्मा का गहरा रिश्ता है। फिर संबंध जहां मिले हैं, माता है, पिता है, संबंधी है सारे, उनके साथ रिश्ता है। फिर जो चीजें हमें आवश्यक हैं जीवन निर्वाह के लिए, चाहे धंधे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, खेती बाड़ी है, जहां भी है, उनसे भी हमारा रिश्ता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। इन सब रिश्तों में अगर हम बहुत बंधे हुए हैं तो फरिश्ता बनना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहता फरिश्ता बनना है तो ऐसे जो भी रिश्ते आपने बनाए हैं, देह से, संबंधों से, साधनों से, सुविधाओं से, बुद्धि का रास्ता कट कर, बार बार बुद्धि वहां न जाए, बाबा में बुद्धि लगे, बाबा से सब कुछ प्राप्तियां आपको हो जाएंगी। तो फरिश्ता बनने के लिए देखना कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि का रिश्ता है, किधर किधर बुद्धि भागती है। और जब हम योग में बैठते हैं ना ऐसे शांत होकर के, तो पता चलता है मन किधर जा रहा है, बुद्धि किधर जा रही है। जिधर बंधी हुई होगी, जिधर कोई रिश्ते अच्छे पक्के होंगे उधर जाएगी, कहीं पर भी होगी। इसलिए बाबा से अगर हमने सर्व संबंधों का रिश्ता जोड़ लिया, जो भक्ति में कहते थे तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा, तुम्ही स्वामी, तुम्ही सतगुरु, कहते थे ना बाबा को ऐसे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, बहुत सारी महिमा भक्ति के अंदर गई। लेकिन समझते थे पता नहीं भगवान कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। संगम युग पर हमको बाबा मिल गया और हमने सोच लिया, समझ लिया कि वही बाबा जिसको हमने जन्म जन्मांतर से याद किया, पुकारा, वो हमारा हो गया। और कहता सर्व संबंधों से जो बच्चा मुझे से मिले, जो चाहे जिस संबंध का रस लेना चाहे मैं दे सकता हूं। निराकार हूं, लेकिन निराकार जब साकार में आता है, ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, तो माता पिता का पहला पहला पार्ट बाबा का शुरू हो जाता, बच्चों को जन्म देना, बच्चों की पालना करना। तो माता पिता के रूप में ब्राह्मण बने और हमने उनको पहचाना, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, माता पिता का प्यार मिला, पालना मिली। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, शिक्षक की जरूरत पड़ी, बाबा खुद शिक्षक बन करके पढ़ाने लगा ब्रह्मा मुख से। फिर आगे चल करके कहते गुरु कर दो, चाहे बचपन में, वैसे तो वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, आजकल तो वानप्रस्थ आएगा या नहीं, इसलिए बचपन में ही गुरु करा देते। तो सतगुरु के रूप में बाबा हमको मिल गया, श्रीमत दे रहा है, मंत्र दे रहा है, वरदान दे रहा है, सतगुरु के रूप में मिल गया। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, शादी की करते हैं, संबंध चाहिए, तो उसमें भी बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे ब्राइड्स ग्रूम हो, मैं तुम्हारा ब्राइड हूँ, तुम मेरी सब आत्मा रूपी सीताएं हो, मैं तुम्हारा राम हूँ, तुम मेरी भक्तियां हो, मैं भगवान हूँ। ये कौन सा संबंध है? यही तो साजन सजनी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। और उस संबंध में वफादारी बहुत होती है। लौकिक में भी जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी के बीच में अगर संबंधों में कहीं भी कोई भी प्रकार की टकराव की स्थिति पैदा होती है तो उसमें वफादारी की कमी दिखाते हैं। और इस संबंध में अगर वफादारी है, जो हूँ जैसी हूँ मैं तेरी हूँ, तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं, कहीं भी दूसरे में आंख न जाए, उसको कहते हैं वफादारी। तो बाबा के साथ वो भी संबंध अभिसंगम परम बनाते हैं कि बाबा हम तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारे से ही बात करेंगे, तुम ही मेरे एक हो और तुम्हारे सिवाय और मेरा कोई भी नहीं। ऐसे जब हम एक वृत्ता बन जाते हैं तो उस संबंध का सुख मिलने लगता है। साथी मिलते हैं, सखा संबंधी मिलते हैं, भाई मिलते हैं, वो भी संबंध बाबा कहता मेरे से जोड़ लो, मैं खुदा दोस्त बन जाता हूँ। जो तुमको जरूरत है बात करनी है मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इस कलयुग के अंदर तो दोस्ती क्या है नुकसान कर देती है। जो दोस्त बना लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कहा है बच्चे सच्चा खुदा दोस्त तो मैं ही हूँ, इसलिए जो तुम्हारे अंदर है मुझे सुना दो, मैं कहीं बताऊंगा नहीं, और मैं तुमको हर समय मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो खुदा दोस्त के रूप में बाबा को याद करो। फिर लास्ट में आता है कि भाई बच्चा होना चाहिए, तो बाबा बच्चा भी बन जाता है, कहता है बच्चे किसी देहधारी को बच्चे की क्या जरूरत है, आज देखो बच्चे बड़े करते हैं, माँ बाप पढ़ाते लिखाते उनको योग्य बनाते, और थोड़ा सा अगर उनको अपने पांव पर आ जाते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, तो माँ बाप को कहते हैं तुम तो भी वानप्रस्थ में चले जाओ, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। बेचारे कितनी मेहनत से बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, संबंध का सुख ही नहीं मिला। बाबा कहता है मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं, मैं तो आपकी सेवा के लिए बंधा हुआ हूं, तो मुझे सिर्फ बच्चा बना करके देखो, मैं ऐसा वारिस हूं जो तुम्हारी पूरी संभाल करूंगा, और एक जन्म नहीं 21 जन्म की गारंटी लेता हूं। तो सभी माताओं ने बाबा को बच्चा बनाया है? बनाया है नहीं, कोई ऐसे नहीं कहता मैंने भगवान को ही बच्चा बनाया है। ये संबंध समझा है कि नहीं? इन्होंने समझा है इस संबंध को? हाथ उठाओ, बहुत कम है भाई लोग। अगर ये भी संबंध बाबा के साथ नहीं जोड़ा ना, तो बुद्धि अपने लौकिक में जाती रहेगी बार बार, और अगर उनसे कोई दुख मिला तो बस सारा जिंदगी बेकार हो जाती, क्योंकि आजकल के बच्चों पर क्या भरोसा। कहीं कहीं तो बड़े अच्छे होते हैं, मदद करते हैं, लेकिन कोई कोई तो ऐसे भी निकल जाते हैं। तो हम सभी बाबा के साथ संगम युग पर सब संबंध जोड़ करके एक वृत्ता बन जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन, जिस संबंध की जरूरत है बाबा को प्यार करो, याद करो, उसी संबंध से रूह रियान करो, उसे बातें करो, बाबा मेरे तो आप ही एक हो, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मुझे इतनी सब प्राप्तियां आपने करा दी, क्या नहीं दे दिया, ज्ञान का धन दे दिया, चरित्र का धन दे दिया, सब प्रकार के व्यर्थ बचा दिए, कितना ऊंचा भाग्य बना दिया, कहां मलेच्छ जैसी जीवन, खाना पीना रहना क्या था लौकिक में, आपने मुझे नया जन्म दे के साफ स्वच्छ संगम युग पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बना दिया। ऐसे ऐसे बातें करो, यही रूरियान है, और ऐसे रूरियान करते करते बाबा के प्यार में खो जाओ। कई लोग ऐसे हैं जो कलयुग में जिनकी पास्ट जीवन बहुत इसी जीवन में बहुत गंदी रही, कोई न कोई विकार के, कोई न कोई बुराई के इतने अधीन हो करके रहे, जो समझते हो आज के कलयुग में कैसे कैसे लोग हैं, उनका खाना पीना व्यवहार बोलचाल भाषा कितनी गलत गंदी रहती है। और जब बाबा मिल जाता है और बाबा का ज्ञान जीवन में आ जाता है तो एकदम बहुत निर्मल स्वच्छ पवित्र जीवन बन जाती है, व्यसन छूट जाते हैं, भ्रष्टाचार की जो भी बातें सब खत्म हो जाती हैं, उनको लगता है सचमुच बाबा ने ऐसा जीवन बना दिया। और कईयों के जीवन से लोगों को बहुत सीखने को मिलता है, ये लोग देखो कितना क्या थे पहले, इतना गुस्सा करते थे, हर बात में गाली देते थे, झूठ बोलते थे, अभी आज ये लोग क्या बदल गए, कहां से ऐसे जीवन इनकी बन गई। पहले देखो इतनी शराब पीते थे, इतना बीड़ी सिगरेट पीते थे, कितना गंदा धंधा करते थे, आज इनका व्यवहार बदल गया। तो ज्ञान से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है तो लोगों को खिंचाव होता है, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर इनको क्या मिला है, ऐसा कौन इतनी अच्छी समझ इनको दे रहा है। तो बाबा से ऐसी दिल की मीठी मीठी रूह रिहान करो। योग योग करके कई भारी हो जाते हैं, पता नहीं मेरा योग नहीं लगता, क्या करूं, मैं तो बहुत बार कोशिश करता हूं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर थक करके कहते भाई मुझे मजा नहीं आता। योग को इतना भारी बना दिया है कईयों ने तो बात मत पूछो, लेकिन है इतना सहज, जैसे संबंध में हम लोग दूसरे को याद करते हैं ना, तो याद करते करते खो जाते हैं प्यार में। ऐसे बाबा कहता है इतना सब कुछ तुमको मैंने दिया है, प्राप्तियां कराई हैं, देखो इतना ऊंचा ज्ञान दिया। मनन चिंतन की बात आपको बताता हूं। एक पहला पाठ में बाबा ने पढ़ाया आप एक आत्मा हो, पढ़ा ना सबने अच्छी तरह से, रोज पढ़ रहे हैं, यही मुरली में पढ़ते रहते हैं, आप आत्मा हो, आप आत्मा समझ के बाबा को याद करो। अब आत्मा का ज्ञान मिलने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया, मनन करो इस पर, चिंतन करो, विचार करो कि अगर आत्मा का ज्ञान नहीं था तो क्या था, और आत्मा का ज्ञान मिलने से क्या क्या हो गया जीवन के अंदर। सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने के लिए तो नहीं है ना, ज्ञान स्वरूप में आ जाए, दैहिक जो हमारे धर्म भेद थे, जाति भेद थे, जो एक दैहिक अभिमान था कि मैं बड़ा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं ऊंची जाति वाला हूँ, मैं अच्छे कुल वाला हूँ, अभिमान रहता था, अभिमान खत्म हो गया। आप एक आत्मा हो, आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, एक पिता के बच्चे हो, परमात्मा की संतान, आत्मा मालिक है, अधिकारी है। जब वो स्मृति आ गई तो सबसे पहला अधिकार हमारा किस पर हो गया, कर्म इंद्रियों पर हो गया। अगर आत्मा के ज्ञान को हमने यथार्थ समझा है ना, सुनना अलग चीज है, वर्णन कर देना अलग चीज है, किसी को कोर्स में बता देना आप एक आत्मा हो अलग है, लेकिन जिसने आत्मा के ज्ञान को सचमुच यथार्थ समझ करके जीवन में उतार लिया, उसका अपने आंख पर, अपने मुख पर, अपने कानों पर, अपने हाथों पर, अपनी एक एक कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है, राजा है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं चाहता नहीं हूं मेरे मुख से कुवचन निकल गया, मैं चाहता नहीं हूं मेरी दृष्टि खराब हो गई, मैं चाहता नहीं उसने सुनाया और मैं डिस्टर्ब हो गया। मैं मालिक हूं, जो सुनना चाहूं सुनू, जो बोलना चाहूं बोलूं, जो देखना चाहूं देखूं, नहीं तो नहीं देखना है। ये आत्मा के ज्ञान ने इतनी शक्ति दी है, लाइट भी है तो माइट भी है, भटकना बंद हो गया, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो गया, सबको समान दृष्टि सबके प्रति हो गई, सब अपने लगने लगे, हम एक पिता के बच्चे हैं, इस सृष्टि नाटक में आत्मा इस ड्रेस को पहन करके खेल खेल रही है, किसी को मेल की ड्रेस मिल गई, किसी को फीमेल की ड्रेस मिल गई, किसी को आज डॉक्टर का पार्ट मिल गया, किसी को आज इंजीनियर का पार्ट मिल गया, कोई का बिजनेस का पार्ट है, कोई का खेतीबाड़ी का पार्ट है, पार्ट मिला अलग अलग, खेल खेल रहे हैं हम सब पार्टधारी होकर के, आत्मा खिलाड़ी बन करके आई है, पार्ट बजा रही है, जिनके साथ जितना समय पार्ट है बजाएगी, फिर चोला छोड़ेगी, ड्रेस बदलेगी, दूसरी जगह चली जाएगी। आज इस आत्मा के ज्ञान ने एकदम टेंशन फ्री बना दिया, कोई जिए कोई मरे, कोई बीच में चला जाए संबंध से, बहुत प्यारा संबंधी शरीर छोड़ दे। आत्मा का ज्ञान अगर हमने पक्का किया है तो बस यही ध्यान पर रहता है, इसका इतना समय मेरे साथ पार्ट था, मेरा कोई पिछला जन्मों का जो खाता था इस आत्मा ने पूरा किया, अभी गई अगले जन्म में। ज्ञानी आत्माएं सबके बीच में रहते हुए भी इन दुखों के दुनिया से दूर रहती, दुख उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल सकता। अगर सचमुच किसी ने आत्मा के ज्ञान को यथार्थ समझ लिया है तो उनकी स्थिति बहुत बहुत प्यारी बन जाती है। जो आज बाबा ने कहा ना, मनन चिंतन तो किया होगा, पवित्रता जननी है, और जहां पवित्रता है वहां उसके बच्चे साथ साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, सुख और शांति। अगर मेरे जीवन में दुख और अशांति है, माना अपवित्रता है, अपवित्रता है। वो पवित्रता क्या है जो सुख और शांति को ले आती है? अब इस पर विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, सिर्फ सुन लिया सिर्फ भूल गए ऐसा नहीं, कोई भी चीज को गहराई में जाकर के अपने आप से पूछना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जब साइंटिस्ट ने ये गुरुत्वाकर्षण को खोजा तो उन्होंने एक साइंटिस्ट ऐसे एकांत में बैठा था, एक पेड़ से एक सेब गिरा ऊपर से ऐसे। अब उसकी बुद्धि चलने लगी, ये सेब ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया? अब उसने बस सोचना शुरू कर दिया, विचार करना, क्यों क्या कैसे, बुद्धि को चलाना शुरू कर दिया। क्या है जो इस जमीन पर आके गिरा? अच्छा, मैं पैर उठाता हूं तो यहां क्यों लगता, इधर क्यों नहीं जाता है? अब वो गुरुत्वाकर्षण की खोज कर लिया, उसके बाद ये प्लेन बने, उसके बाद साइंस ने इतने साधन बना दिए। एक साइंटिस्ट ने इस खोज को कि इस धरणी में आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, और जितने भी तारागण, जितने भी ऊपर हम नक्षत्र देख रहे हैं, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण जरा भी नीचे ऊपर हो गया तो सब गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब ये साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, खोज किया, कैसे किया, मनन किया, चिंतन किया, इस पर विचार किया। ऐसे ही हम सभी भी जो बाबा की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्थापना का कार्य परमात्मा करा रहे हैं, नई सृष्टि जहां पर दुख और अशांति का नाम नहीं है, जहां चिंता और भय का नाम नहीं है, ऐसी सृष्टि जो भगवान बना रहा है, उसके पीछे कौन सा राज है जो ऐसी सृष्टि होती है कि कहीं भी कोई दुखी नहीं हो? इतनी बड़ी सृष्टि सत्ययुग के अंदर, त्रेता के अंदर होगी, यथा राजा यथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। आधा कल्प तक कोई दुख और अशांति का नाम नहीं होगा, किस आधार से होगा जब भगवान वहां नहीं है, भक्ति पूजा पाठ नहीं है? सब बाबा ने स्पष्ट किया है, ज्ञान सुनाया है, फाउंडेशन तो कुछ होगा, और वो फाउंडेशन पवित्रता का है, और वो पवित्रता केवल आत्मा के ज्ञान से आई है। विचार करना इस पर, सत्ययुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं है, कोई देवताओं को पता नहीं भगवान कौन है। आत्माभिमानी स्टेज ने आत्मा को इतना पवित्र बना दिया, स्वच्छ बना दिया, क्योंकि वो देह से, संबंधों से, चीजों से अलग हो गई, कि ये तो उनको खेल खेलने के लिए मिली, ये पार्ट बजाने के लिए मिली, मैं अलग हूं इनसे। एक आत्मा के ज्ञान ने आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाया जो एकदम संपूर्ण पवित्र बन गई, स्वच्छ बन गई। कमी है, जरूरत इसलिए बाबा की समय पड़ी है क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं रही, वो देहाभिमान में इतना अधिक आ गई है जो बार बार उसको देह अपने अधीन कर देती है, इसलिए बाबा की मदद की जरूरत पड़ी। इसलिए कहता, योग करो मेरे से, तो मुझे याद करोगे, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे, तो मेरी शक्तियां आपके पास आएंगी, मदद मिलेगी, और ये जो देहाभिमान बार बार आता है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम योग करते हैं ना, पूरा कल्प बाबा का साथ नहीं है, संगम पर मिलता है, संगम पर ही हम उसको पहचानते हैं, और जब पहचान लेते हैं तो सबसे पहली धारणा हमारी होती है, हम आत्माएं बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बन जाती है। पवित्रता सिर्फ एक काम विकार की नहीं है, एक विकार को जीत लेना, वो तो कई सन्यासी, कई विधवाएं, कई कुमारियां हैं जो पवित्र हैं, लेकिन संगम युग पर जो पवित्रता का महत्व है, श्रीमत के अनुसार जो हम आत्माएं घर गृहस्थ में रह रहे हैं, पति पत्नी परिवार साथ रह रहे हैं, उनके बीच में रह कर के इस व्रत को पालन कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत रहस्य हैं। क्या रहस्य हैं? क्यों भगवान ने हम सबको इस बंधन में बांधा? क्योंकि इसी से नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और जितना जिसने आत्मा के पाठ को पक्का कर लिया वो कर्म इंद्रिय जीत बन गया, कोई कर्म इंद्रिय उसको अपने अधीन नहीं कर सकती। कभी भी नहीं कह सकता है मेरे चाहता नहीं था, मेरे संस्कारों ने मेरे से ऐसा करा दिया। उनका मन पर शासन है, बुद्धि पर शासन है, संस्कारों पर शासन है। तो हम सब ऐसे अभ्यास करें, मनन करें, चिंतन करें, जो बाबा ने मुझे सुनाया है इसके पीछे कितनी बड़ी शक्ति है और किस लिए इसकी जरूरत है। पूछो अपने आप से, बात करो। मुरली के अंदर कई ऐसी बातें, हम कहते हैं सारी मुरली नहीं याद करो, लेकिन चार बातें, पांच बातें बाबा की, कोई ऐसी मूल बातें जो आपको लगती है ये कुछ नई बात सुनाई बाबा ने, दुनिया की बातों से अलग हट करके बात है, उसको नोट करके उस पर प्रश्न डालो, ये है क्या चीज, इससे क्या मिलेगा, इसकी क्या गहराई है, क्यों, क्या, कैसे, के थोड़े से प्रश्न उठा दोगे ना उसका विस्तार मिल जाएगा आपको सारा। जैसे कहते हैं ना, मक्खन निकालने के लिए सिर्फ पानी के अंदर नहीं बिलोते हैं, पहले दूध को जमाते हैं, पकाते हैं, फिर उसमें मथानी चलाते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकालते हैं, फिर घी बनता है, फिर उसको खाते हैं तो शक्ति आती है, हजम होता है। बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से मंथन करना, विचार सागर मंथन, ये सागर को मथा जाता है, तो ऐसे अगर उस पर हम गहराई से सोचते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो उसका जो निचोड़ मक्खन है वो हमारे जीवन को सशक्त बना देता है। आत्माएं जो आज निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों का सामना नहीं कर पा रही हैं, कोई भी बात आती है तनाव हो गया, परेशान हो गया, सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया, कारण क्या है? वो बातों को देख करके सहन नहीं कर पाता, उसका मन इतना क्षीण है, इतना कमजोर है, जो कोई भी बात का सामना नहीं कर पाता। और कलयुग के अंदर बातें तो सबके सामने आती, कौन ऐसा कहेगा मेरे सामने बातें नहीं आती, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबके सामने कोई ना कोई पेपर आते हैं, क्योंकि 84 जन्म आत्माओं के साथ पार्ट बजाया है, हिसाब किताब बनाए हैं, जो कर्म हमने किए हैं उसका प्रतिफल कलयुग के अंत में भोगना है, चुप तो करना, भोग करके हल्का करके फिर वापस जाना है। ये ज्ञान बाबा ने कितना वंडरफुल दिया है, क्वेश्चन उठता ही नहीं क्यों आ गया ये इतना बड़ा ज्ञानी, इसके आगे पेपर क्यों आ गया, प्रश्न उठता है, माना उसके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा है तो देखती, अच्छा ये बात इनके सामने आई, जरूर इसका कोई पास्ट का हिसाब किताब होगा, वो चुप तो हो रहा है, इसका खुशी होती है, भाई कर्जा था उसका उतर गया, हल्के हो गए हम। तो ज्ञान को अगर सचमुच किसी ने यथार्थ रीति से समझा है, आत्मा के ज्ञान को यथार्थ रीति से जीवन में उतारा है, पुनर्जन्म के ज्ञान को भी यथार्थ समझा है, सृष्टि चक्र के ज्ञान को यथार्थ समझा है, घर को समझा है, तो मैं समझता हूं वो कभी भी कोई भी दृश्य को देख करके डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, उसकी स्टेज बिल्कुल न्यारी प्यारी निश्चिंत बन जाती है, प्रश्न उठते ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो नाटक चल रहा है ना, इसका नाटक शब्द इसलिए कहते हैं, ना अटक, अटकना नहीं कहीं, सब दृश्य देखो, सब सीन देखो, सब बाहर के कार्य व्यवहार में आओ, लेकिन कहीं अटक नहीं जाना। अटकता कैसे, लोग कैसे अटकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे करता है, ज्ञान तो बड़ा है, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा ऊंचा देता है, लेकिन इसके भी ये संस्कार है, अटक गया। बाबा कहता अटक गया तो लटक गया, फिर न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। सबके पार्ट को देखना, बहुत साक्षी होकर के देख करके हर्षित रहना, कहते हैं विष्णु जी सागर में लेटे हुए हैं, खीर सागर है, दूध का सागर बनाते हैं, शायद आप लोगों ने नेपाल गए हो तो देखा हो, काठमांडू में एक श्री नारायण का जो की मूर्ति है, विष्णु की लेटी हुई एक तालाब के अंदर लिटाई हुई है, बहुत बड़ी। बाबा वहां जाते थे भक्ति काल के अंदर, उसको याद करते हैं। खीर सागर में वो नारायण विष्णु जी लेटे हुए हैं, सांपों की सैया है, उसी सैया पर विश्राम कर रहे हैं और शेषनाग उनकी ऊपर से सुरक्षा कर रहे हैं, पांच तन वाला ऐसा। बाबा कहता बच्चे किसकी यादगार है, कभी ऐसे देवताएं सांप के ऊपर लेटेंगे, सागर के बीच में लेटेंगे क्या? क्या उनके पास अपना आसन नहीं था, क्या घर नहीं था सोने का? ये सब संगम युग की स्थितियों के यादगार है। इस संगम के समय पर हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने इस विषय सागर के बीच में जो खेर सागर बना दिया। हम ये नहीं सोचते ये तो कलयुग है, ये तो विषय सागर है, बहुत बुराइयां हैं, बहुत पाप हैं। बाबा ने कहा बच्चे इस विषय को खीर बना दो, दूध बना दो, और उस दूध के सागर में ये जो पांचों विकार सांप की भयानक रूप से वार कर रहे हैं, इनको सैया बना दो, आराम की स्टेज सहयोगी बना लो इनको, और आराम से ज्ञान मंथन करो। कहते विष्णु जी सागर मंथन कर रहे हैं, जैसे पैर पर पैर चढ़ाए हुए निश्चिंत स्थिति है, बेफिकर स्थिति, इसको विचार सागर मंथन की स्थिति कहा जाता है। कोई हलचल नहीं, सागर की लहरें कितनी भी हैं, वो हलचल के बीच में रहते हुए भी अचल हैं, अडोल हैं, एक रस हैं, कोई भी उनका जहरीला सांपों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति ही संगम योगी ब्राह्मण जो आत्माएं ज्ञान सागर का मंथन करती उनकी बन जाती है। हम सबकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी हो रहा है इस विषय सागर के अंदर, बाबा ने तो मुझे खीर सागर में पॉजिटिव, हर बात को पॉजिटिव लेने का एक संस्कार बना दिया। बच्चे इसके अंदर रहो, आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव दो, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसके अंदर भी कुछ रहस्य है। ये जो सीन आई है ये भी कुछ हमें सिखा करके अनुभवी बना करके आगे जाएगी, इसलिए हलचल में ना करके उसमें अचल स्थिति रहे। कोई भी ऐसी बातें नेगेटिव बातें दिखाई दे, अपनी स्थिति एक रस रहे, ज्ञान मंथन करो, बाबा के साथ का अनुभव करो, मस्त स्थिति में रहो, तब कहेंगे ज्ञान का इसने मंथन किया है। तो एक है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मंथन करेंगे तो मक्खन मिलेगा, उसका सार मिलेगा, और सार अगर जीवन में उतार लेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, हमारा मनोबल इतना शक्तिशाली हो जाएगा, कोई भी बातें आ जाएंगी जिसका मन सशक्त है उसको बहुत सहज पार कर लेता है। आज देखो कोई को छोटी सी बीमारी होती है, मन कमजोर है, पता नहीं अभी क्या होगा, मैं ठीक हूंगा या नहीं हूंगा, फिर एक डॉक्टर के पास जाएगा, कोई दूसरे की राय देगा वो बहुत अच्छा, उसके पास चला जाएगा, वो राय देगा तीसरे के पास चला जाएगा। अपनी एक छोटी सी बीमारी को ठीक करने के लिए कमजोर मन वाला कितना भटक जाता है, कितना अंदर अंदर परेशान हो जाता है, और जो शक्तिशाली है चलो ठीक हो जाएगा, आई है बात ठीक हो जाएगी, एक में विश्वास रख करके दो चीजें मदद करती है, एक दवा एक दुआ। अगर सचमुच मैंने दुआएं ली हुई हैं, मन सशक्तशाली शक्तिशाली है, मन को अच्छे अच्छे विचार देने की आदत है, तो शरीर की कोई भी परिस्थिति आती है मन अपने आप पार कर लेता है, उसको उतना डिस्टर्ब नहीं होता। आजकल अगर शरीर का प्रभाव मन के ऊपर आ गया, मन कमजोर है, तो कोई भी बीमारी सहज नहीं खत्म होती, बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा ने हम सबको सशक्त बनाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए मंथन सिखाया, ज्ञान मंथन करो, हर बात में कितने रहस्य कितने राज कितना कल्याण भरा हुआ उसका चिंतन करो, और अपने को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली बन जाओगे तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, देखो कभी आर्थिक रूप से परिस्थितियां आ रही हैं, कभी शारीरिक रूप से आ रही हैं, प्रकृति के द्वारा आ रही हैं, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा आ रही हैं, सरकार के द्वारा आ रही हैं, कितनी प्रकार से आत्माओं को हिसाब किताब सामने आ करके परेशान कर रहे हैं, लेकिन मन शक्तिशाली है, बाबा का साथ है, बस आई है बातें खत्म हो जाएंगी, वो हिलते नहीं है, वो ज्यादा सोचते नहीं है। कईयों को सबसे बड़ी बीमारी अधिक सोचने की है, सोचना नहीं है। ज्यादा सोचोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जो बातें आती हैं बाबा को बोलो, बाबा आप जवाबदार हो, मैं तो आपका बच्चा बन गया, बस समर्पित करो, हल्के हो जाओ। तो रूरियान करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, शक्ति लो, ज्ञान का मंथन चिंतन करो और बहुत हल्की स्टेज में फरिश्ता बन करके, कर्मयोगी बन करके रहो। ये फरिश्ता स्थिति एकदम आपको ऐसे अनुभव कराएगी जैसे सब कुछ करते हुए मैं अकड़ता हूं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कर्म संन्यास तो हमारा है ही नहीं। बाबा ने हम सबको कर्म योगी बनाया है, परिवार है, गृहस्थी है, सब कुछ है, सबको संभालते हुए, सबके बीच में रहते हुए, सब जवाबदारियां संभालते हुए, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं, बोझ नहीं, करावन हार करा रहा है। मैंने तो बाबा को सब अर्पित कर दिया, जो कराएगा हम कर लेंगे। आपको फरिश्ते स्थिति का अनुभव होगा, डबल लाइट स्टेज का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा एक तो रूप में भी प्रकाश है, लाइट है, ज्योति है, और उसके ऊपर अगर कोई भी प्रकार का कर्मों का, मनन का, चिंतन का, किसी भी प्रकार की चिंता का बोझ नहीं है तो वो हल्की है। तो हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें, अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठें और बाबा का आवाहन करें और इस शरीर से ऊपर चले जाएं, शरीर लें, कर्मयोगी बन के कर्म करें और कर्म से न्यारे हो जाएं। तो ऐसी स्टेज बनाएंगे ना तो फरिश्ता स्टेज आपकी नेचुरल बन जाएगी, और इस फरिश्ते स्टेज में आपको ये अनुभव होगा कि मैं आत्मा एक बिल्कुल चमकते हुए इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत अच्छा पवित्रता का क्राउन है। जो आत्माएं ऐसे शुद्ध हल्के संकल्पों में रहती है ना, उनका ओरा जो है, जिसको हम प्रभा मंडल आभा मंडल कहते हैं ना, वो बहुत चमकीला लाइट का बन जाता है। उस लाइट के चमकीली ड्रेस में जैसे आत्मा प्रवेश करती है, हल्के शरीर में गई और बाबा के पास उड़ गई, तो ये उड़ने के जैसे पंख मिल जाते हैं। तो हम सभी ऐसी प्रैक्टिस करें, ऐसा अभ्यास करें, हाँ भोपाल भाई इधर आ जाओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, क्लास पूरा होने वाला है, आप आओ इधर। मेरे माँ बाप के नहीं है, बाबा के हैं, आप आओ। भोपाल भाई को तो सभी जानते हो ना, हमारे उदयपुर डूंगरपुर वाले तो जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं ना, नरेला वाले जानते हो, हमारे भोपाल भाई शांति वन की शान है, शान नहीं है, फाउंडेशन है। इसको बनाने में, खरीदने में, इसकी नींव में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अनुभव अलग हैं, भोपाल भाई ने सुनाए होंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। मैं तो इनको ये सुना रहा था भोपाल भाई कि मनन चिंतन करके कैसे अपनी स्थिति को डबल लाइट बनाएं, फरिश्ता बनाएं, क्योंकि अभी समय अनुसार हम सबको उस ड्रेस में जाना है। मिट्टी की ड्रेस तो हमने बहुत समय पहनी है, देहाभिमान में रहे ना, और बाबा अभी लाइट की ड्रेस में है। अगर हमारी मिट्टी की ड्रेस हम छोड़ेंगे नहीं तो बाबा से मिलन नहीं मना सकते। पहले तो बाबा को भी आना पड़ता था, आते थे बच्चों के बीच में, कहते थे बच्चे याद करते हैं तो मैं अपना आकारी वतन, निराकारी वतन छोड़ के साकार वतन में आ जाता हूँ। और अभी समय आ गया है जो हमको बाबा कहता है, बच्चे अब तुम मेरे पास आओ, मेरे से अगर शक्ति लेनी है, मिलन मनानी है, मनाना है, तो आपको आकारी ड्रेस पहननी पड़ेगी, फरिश्ता ड्रेस पहननी पड़ेगी। बिना फरिश्ता ड्रेस पहने ही मेरे से रूह रिहान नहीं कर सकते। किसी भी बड़े आदमी से अगर मिलना होता है तो ड्रेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई बहुत मैली ड्रेस में, कीचड़ वाली ड्रेस में होगा, तो कोई बड़े घराने वाले से मिलना हो तो कहते नहीं, तुम नहीं मिल सकते हो, पहले अपने को साफ करके आओ। तो बाबा जो बहुत पवित्र ड्रेस में है, लाइट की ड्रेस में है, मिट्टी की ड्रेस नहीं, उसको दाग वाली ड्रेस नहीं है, और उस बाबा से हमें बातें करनी है, रूह रिहान करनी है, उसे मिलन मनाना है, शक्ति लेनी है, तो हमें भी उसी ड्रेस में उसके पास जाना है जैसे उस ड्रेस में वो रहता है। तो शिव बाबा की ड्रेस लाइट की ड्रेस, ब्रह्मा बाबा भी लाइट की ड्रेस में चला गया, उसने भी अपनी मिट्टी की ड्रेस को छोड़ दिया। हम सभी ब्राह्मणों को इस संगम पर बुद्धि से इस ड्रेस में हैं, जब कर्म में आना है तो हम इस ड्रेस को लेते हैं, लेकिन जब योग करते हैं या हम हल्के हो जाते हैं, कर्म से न्यारे होते हैं, तो हम लाइट की ड्रेस पहन लेते हैं। आत्मा एक शुद्ध पवित्र और उसके चारों तरफ एक पवित्रता की लाइट है, और उस पवित्र विचारों के लाइट के आभा मंडल से हम लाइट के वतन में चले जाते हैं, बाबा से मिलन हो जाता, और जब मिलन होता है तो रूह रिहान होने लगती है, बाबा आपने मुझे इस कलयुग की पतित दुनिया से निकाल लिया, इस दुख धाम से मुझे निकाल करके अपना बच्चा बना लिया, कितना पवित्र बनाया, कैसा योगी जीवन बना दी, कितना निश्चिंत बना दिया, जब चारों तरफ दुनिया के अंदर भय है, दुख है, अशांति है, आपने मुझे ऐसे संसार में भय मुक्त बना दिया, दुख अशांति से छुड़ा दिया, बाबा आपका मैं कितना शुक्रिया करूं। तो बाबा शुक्रिया सुनता भी है और फिर जवाब भी देता है, ऐसे रूह रिहान करो बाबा से मीठी मीठी, लेकिन रूह रिहान का उत्तर तभी अनुभव होगा, क्योंकि उसके पास ये मिट्टी का मुख नहीं, ये वाला मुख जो बोलेगा, वो लाइट की ड्रेस में है, वो आपकी भावनाओं को समझता है और आपकी भावनाओं का उत्तर भी नैनों से देता है, बहुत रूहानी मुस्कान से देता है, आप कैच करो उसको तो आपको अपनी रूह रिहान का रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए जब ही भी बाबा से अव्यक्त मिलन मनाना है तो अब समय ऐसा आया है 3-4 साल से, जो बाबा का अव्यक्त पार्ट भी अभी नहीं चल रहा है, जैसे बाबा का चला है 48 साल, अभी बाबा अव्यक्त वतन में हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए आह्वान कर रहा है, कहीं गया नहीं है। जब तक संगम युग का पार्ट पूरा नहीं हुआ, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस पार्ट से छूट नहीं सकती, क्योंकि स्थापना का कार्य उनका है। इसलिए सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के साथ रह करके देश विदेश में लाखों बच्चों की सूक्ष्म सेवा कर रहा है। हम बच्चों को कहता है, बच्चे मेरे समान बनो, मेरे साथी बनो, मेरे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनो, इस प्रकृति को पावन बनाने में सहयोगी बनो, इसके लिए आप हल्की ड्रेस पहनो, लाइट हो जाओ, अपनी सब जवाबदारियां बाबा तू मेरा मैं तेरा अर्पित करो, और जब हल्के बन जाओगे तो इस शरीर से न्यारे होगे, और न्यारे बन करके बाबा के साथ का अनुभव होगा और बाबा की शक्तियां मिलेंगी, और आप बाबा के साथी बन करके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सके। इसलिए पहले ज्ञान का अच्छा मंथन चिंतन करो, शक्तिशाली आत्मा को बनाओ, फिर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, उसके प्यार में समाने का अनुभव करो, और फिर एकदम फरिश्ता बन करके बाबा के साथ इस विश्व परिवर्तन की सेवा में मदद करो। यही वर्तमान समय का हम सबका पुरुषार्थ है। ठीक है, अभी हम सब योग करेंगे ना, चलो अभी साकार वतन से अपने अव्यक्ति वतन की सैर करेंगे। अव्यक्त वतन, निराकारी वतन, जो हम आत्माओं का अपना निजी घर है। साकार वतन तो बहुत समय से हमने चुना है, इसमें तो रह रहे हैं, लेकिन साकार को भी हम देखते हैं, तो बाबा ने हम सबको साकार वतन में भी संगम युग पर बेफिकर बेगम पुरका बादशाह बनाया है। है कोई गम? कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे सभी अपने बेफिकर बेगम पुर की बादशाह वाली स्थिति में बैठो, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मन और बुद्धि मुझ आत्मा की चैतन्य शक्ति है, संकल्प शक्ति से ही हम इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा करते हैं। इसलिए संकल्प दो अपने आप को, मैं एक शुद्ध पवित्र लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। इस देह और देह की दुनिया से दूर, इस सूर्य चांद तारा गणों के भी नील गगन के पार, मेरा अपना निज घर, लाइट का वतन, अव्यक्त वतन, जहां बाप दादा हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं, उस लाइट के वतन में मैं बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे, उनकी स्नेह भरी दृष्टि को लेते हुए अपने निज धाम शांति धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। परम धाम शांति धाम मुझ आत्मा का असली घर, चारों ओर असीम शांति है, उस गोल्डन लाइट प्रकाश के बीच ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे मैं असीम शांति और शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की समीपता का अनुभव करो। उनके समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर बैठो। उस परम धाम की ऊंची स्थिति से इस ग्लोब को शक्ति और शांति का दान दो। अपने निराकारी स्वरूप से आकारी वतन में आकर अपने फरिश्ते द्वेष द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करो। दुखी अशांत भयभीत आत्माएं जो अपने इष्ट देव को पुकार रही हैं, उनकी पुकार सुनो। अपने वरदानी हस्त से सर्वात्माओं को वरदान दो। बाबा की वरदानी हाथ का अनुभव करते हुए मैं बाबा के समान मास्टर दाता वरदाता और भाग्य विधाता उस स्वरूप से इस आकार वतन में अवतरित हुई हूँ। विश्व कल्याण की सेवा के लिए मैंने ये रथ ये शरीर धारण किया है।